आगे है आयत नंबर 26 से 33, 26 से 33 रुकू नंबर 2 है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इसका टॉपिक लिखिए, ख्वाहिशात की पैरवी कबायर तक ले जाती है। यानी जब हम ख्वाहिशों की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं ना, तो कबीरा गुनाह पे जाते हैं। इसके भी मिसाल पिछले रुकू में पड़ी है। ज़िना कबीरा गुनाह है। औरत मर्द का तन्हाई में अकेले होना बग़ैर किसी वजह के और शहवत रानी की बातें करना, ये कबीरा गुनाहों में आता है। तो ये ख्वाहिशें हैं जो हमें इन चीज़ों तक ले जाती हैं। आइए देखते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत है, और अगर हम आज की शीट को खोल लें तो हमारी आयात तदब्बर भी इसी हिस्से में आती है कि ख्वाहिशात की पैरवी क्या है। यानी हमारी इस पारे की आयत तदब्बर सूरत निसा की आयत नंबर 27 है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊनश शहवात। और अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। तो इंशाअल्लाह ताला हमने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, बल्कि इसके मुकाबले में अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करनी है। अब एक स्ट्रेच में इसका तर्जमा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान करे, और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चला दे, और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, और जो लोग ख्वाहिशात के पैरोकार हैं यानी उसके फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि तुम इससे बहुत दूर हट जाओ। अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे कमी कर दे, यानी तख़फीफ़ कर दे, लाइट कर दे, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है। ऐ ईमान वालों, अपने आपस के माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से हो। ख़रीदो फरोख्त और अपने आप को कत्ल न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। और जो शख्स ये नाफरमानियाँ यानी सरकशी और जुल्म से करेगा, तो अनकरीब हम इसको आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज़्ज़त और बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। और इसकी आरजू न करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुमसे बास को बास पर बुजुर्गी दी है। मर्दों का इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए इनमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल्लाह ताला से इसका फ़जल मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। माँ बाप या क़राबतदार जो छोड़ मरें, इसके वारिस हमने इस हर शख्स के लिए मुकर्रर कर दिए हैं जिनसे तुमने अपने हाथों मुआहदा किया है। इन्हें इनका हिस्सा दो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर हाजिर है। इस हिस्से में हमने ख्वाहिशात की पैरवी भी देखी, और याद रखिए कि ख्वाहिश एक ऐसा स्लिपरी रास्ता है कि जो हमें बताए बग़ैर हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से उलझाव पैदा करता है कि हम फिर अल्लाह के हुक्म पर तो खड़े होते ही नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम अच्छी करना चाहते हैं लेकिन ख्वाहिश ऐसा इंसान की मत मार देती है कि जिसके बाद एक बंदा अपने आप को उससे दूर करता है। फिर इसी तरह हमने इसमें बातिल तरीके से माल दूसरों का खाने का जिक्र पड़ा, तो बातिल तरीके क्या होते हैं? धोखा, फरेब, जालसाजी, मिलावट। इसके अलावा तमाम वो कारोबार उन चीज़ों की खरीदो फरोख जिनसे शरीयत ने मना किया है, मसलन शराब, खंजीर का गोश्त खाना पीना। फिर इसी तरह से ममनू और हराम चीज़ों का कारोबार करना, मसलन आप देखिए कि न्यूडिटी फैलाना, फहाशी फैलाना, आज के दौर में ऐसी चीज़ों को आप देखिए तो अमूमन पूरा बिज़नेस बन चुका है, शो बिज़नेस की हर वो चीज़ जिससे बेहयाई फैले। आप वीडियोस बनाते हैं, क्या होता है उन वीडियोस में? एक शादी की वीडियो और एक इंडियन मूवी की वीडियो में कितना को फ़र्क रह गया, जबकि गाने भी उन्हीं के डाल दिए, तो ये जायज़ नहीं होगा। आप फ़ोटो सेशंस करते हैं, एक लड़की जो भी नई नई किसी मर्द के निकाह में गई है, अभी उस मर्द बेचारे ने तो देखा भी नहीं उसको, और एक फ़ोटोग्राफ़र उसका हर पोर्ट्रेट ले रहा है। कभी आपने सोचा, चाहे वो मंगेतर हो चाहे नॉन वेली बीवी हो, और मंगनियों पे ऐसी तस्वीरों का बनना, और बड़े फ़ख्र से बाद में आने वालों को दिखाते हैं आपको तस्वीरें दिखाएं? अगर आप एक दफ़ा कहते हैं ना हमें नहीं देखनी, कोई भी नहीं बनाएगा। ये मैं और आप खामोशी से ऐसी चीज़ों में तावुन करते हैं, और साथ क्या कहते हैं, कितनी प्यारी लग रही है, ये तो पहचान ही नहीं जा रही। जब आप किसी को ये कहते हैं ना पहचान ही नहीं जा रही, तो आप तारीफ़ नहीं कर रहे होते, बुराई कर रहे होते हैं कि इतनी बदसूरत थी पर आज कितनी प्यारी लग रही है। तैसी तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं। हर वो गंदी चीज़ जिससे दुनिया में फहाशी और उरियानी फैले, इसका बनाना सब कुछ नाजायज़ है। फिर अब देखिए कि इस हिस्से में हमने कबायर का तذکرہ किया। कबायर क्या होता है? कबीरा गुना की कोई एक लिस्ट नहीं दी अल्लाह ताला ने, हमारी सवाबदीद पे भी छोड़ दिया। बाज़ कहते हैं कि जिस पर हद है वो कबीरा है, बाज़ कहते हैं जिन कामों के बाद जहन्नुम का तذکرہ है, जहन्नुम में हमेशगी की ज़िंदगी का तذکرہ है, वो कबीरा है। बहरहाल अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए इन आयात में एक चीज़ रखी है, इसको इस माइंड मैप से देखिएगा कि दुनिया और आखिरत की इज्जत और कामरानी आप चाहते हैं तो तीन काम कीजिए, कबायर गुनाहों से परहेज़ कीजिए। इसकी लिस्ट है, इमाम ज़ाहबी ने अल कबायर के नाम पे किताब लिखी जिसमें तकरीबन 70 से ज़ायद उन्होंने ऐसे आमाल लिखे कि जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कबीरा गुनाहों में आते हैं। और इसी तरह से अगर आप कबीरा से बचते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके सगीरा गुनाहों की भी बख्शिश कर देगा और अपनी रहमत भी आपके शामिल हाल करेगा। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, गुनाहों से बचो जो हलाक करने वाले हैं, मोहलिकात कहते हैं इनको, सबल मोबिकात का लफ्ज़ भी आता है एक हदीस में। पूछा गया कि अल्लाह के नबी वो कौन से गुनाह हैं? आपने फरमाया, अब यहाँ से आप ज़रा एक अपने माइंड में एक चेक लिस्ट तो बना लीजिए कि ये जिनका भी जिक्र सुनने लगी हूँ ये कबीरा हैं, और कबीरा की माफ़ी तौबा के बग़ैर नहीं होगी, कहीं मैं इनमें इन्वॉल्व तो नहीं हूँ। नंबर एक, शिर्क करना, और जिसका कत्ले हराम हो इसे कत्ल करना, हाँ किसी शरई वजह से इसका खून हलाल हो गया हो तो वो और बात है। तीसरी चीज़, जादू करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, और मैदान जंग से कुफार के मुकाबले में पीठ दिखाना, और भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों को तोहमत लगाना। 3 सेकंड देती हूँ, इस लिस्ट पे नज़रें जमाइए और अपने आप को ढूंढिए, कोई एक भी जरासीम अगर कबीरा का आ गया हमारी ज़िंदगियों में तो याद रखिए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुसवाई का ज़रिया बनेगा क़यामत के दिन। और साथ ही साथ अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे आपको बचा ले। इस रुकू से हमने क्या सीखा है? नंबर एक, सालेहीन के तरीके की पैरवी कीजिए, बुरे लोगों के नक्शे कदम पे मत चलिए। आम रिवाज है, लोग कहते हैं सब करते हैं, सभी करते हैं, मेरी दोस्त भी ऐसे ही करती है, और मामा आप तो बहुत ही रिजिड हैं, फलां तो इतनी अच्छी हैं। नहीं, नेक लोगों के तरीके, हमेशा अपने इर्द गिर्द नेक लोगों को ढूंढिए, उनके पास रहिए और उनसे सीखिए। और ये ना कहा करें कि ये तो नेक हैं जी, इन्होंने तो ये करना ही है, ये तो मस्जिद के बगैर नमाज़ पढ़ेंगे नहीं। क्यों भाई, आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप नेक नहीं बनना चाहते जी? ये तो हिजाब नकाब करते हैं, ये हम थोड़ी, ये तो वो बड़े लोग हैं, आप कीजिए। फिर दूसरा जो इससे हमने सीखा कि अल्लाह का फजल मांगना है, हर वक्त ज़ुबान पे लफ्ज़ रखिए कि अल्लाह मुझ पे अपना फजल कर दे। आप कहते फजल क्या होता है? मेरी औकात से ज़्यादा दे, फजूल चीज़ कहते हैं ना, एक्स्ट्रा। अल्लाह मैं डिज़र्व नहीं करती, मेरे पास वो नेकी नहीं, मेरे पास वो अमल नहीं है, बस तो अपनी रहमत से मुझे वो अता कर दे। फिर इसी तरह आपस के लेन देन बाहमी रजामंदी से करने हैं, यानी नाजायज़ और बातिल तरीक़ों से दूसरों के माल नहीं खाने। फिर कबीरा गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह, जो कुछ दूसरों को मिला है इसकी तमन्ना नहीं करनी, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी नहीं करनी, राह रास्त से हटकर दूर नहीं जाना, जुल्म और ज्यादती नहीं करनी। अल्लाह ताला आपको मुझे इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला रुकू देखिए, 34 से 42, इसका टॉपिक लिखिए बिगड़ी हुई बीवी की इस्लाह का तरीका। सुबहान अल्लाह, लगती है आपको कुरान किताब ऐसी हस्ती की तरफ से कि जिसको बंदे के हर मसले और हर चीज़ का पता है? दुनिया में बिगाड़ बहुत है, कुरान उसकी इस्लाह का तरीका बताता है। कैसे, आइए देखिए। अर रिजालु कवामून अल निसा, मर्द औरतों पर कवाम है। कवाम कहते हैं जिम्मेदार, मैनेजर, मुतकल्लिफ, यानी बोझ उठाने वाले, जिम्मेदारियां निभाने वाले, टेक केयरर हैं वो, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक मजबूत सहारा होते हैं। याद रखिए कि औरत को मजबूत मर्द चाहिए होता है, वो मर्द जो उसके आगे ज़िंदगी के तूफानों में एक दीवार बन जाए, जो लोगों की बातों के मुकाबले में उसके लिए एक ढाल बन जाए, वो मर्द जिसके ऊपर औरत तकिया कर सके। और ये बात भी याद रखिए कि औरत अपने मिजाज से और अपने वजूद से बड़ी कमज़ोर चीज़ है। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको, जैसे बेल ज़मीन पे उगती है ना, लेकिन उस बेल का एक सिरा उठाकर एक दरख्त के साथ बांध दें तो वो ऊपर उठती है। यहाँ इस तसव्वुर से सोचिए कि बेल औरत है, मर्द एक दरख्त है, अगर एक औरत एक मर्द के सहारे ऊपर चढ़ती है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो मर्दों को जिम्मेदार बनाएगा। वजह क्या है, आगे लिखा हुआ है, इस वजह से कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। तो मर्द की बड़ाई की सिर्फ दो बातें हैं कुरान में। नंबर एक, फिज़िकली स्ट्रांग, बोझ उठाते हैं, डरते नहीं हैं, जज्बाती नहीं होते। घर में चोर आ जाए तो मर्द सामने जाता है, चूहा आ जाए तो मर्द उसको मारता है, लाल बे कॉकरोच आ जाए तो मर्द आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि बेगम को आगे करके खुद छुप जाएं कि तुम करो ये काम। जिस्मानी मजबूत जहनी काम मर्द को करने चाहिए। और दूसरी बात, कवामियत है मर्द का खर्च करना, ये मर्द की शान है। माल कमाना, रिज़्क़े हलाल कमाना इबादत है। घर वालों के लिए काम करना अलकासिबु हबीबुल्लाह, तो अपने मर्दों की कदर किया करें। अगर वो सारा दिन गर्मी में जाकर खून पसीना बहाकर कुछ रोज़ी रोटी ले आते हैं, एक टुकड़ा भी न ज़ाया करें। एक चावल का दाना धोते हुए अगर आपके सिंक में गिर गया, आपने अपने मर्द की कमाई में से चलिए एक पैसे सही, एक पैनी सही, एक मिनट या एक सेकंड की उसकी मेहनत ज़ाया की, लेकिन नाशुक्री तो होगी। तो औरत को हमेशा मर्द के माल की हिफाजत करनी चाहिए। मर्द की कितनी खूबियाँ सुनी, दो, मजबूती और कमाना। अब ज़रा औरत की लिस्ट आपने ख़ुद बनानी है। आपकी मेरी लिस्ट तैयार है अल्लाह के पास। फसालेहातुन कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबी बिमा हाफिज़ल्लाह, पस नेक फरमा बरदार औरतें शौहर की गैर मौजूदगी में। ये भी नोट कीजिएगा, एक औरत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ये कि जब शौहर पास ना हो तो ये हिफाजत इलाही निगहदाश्त करने वाली हैं। इसके दो मानी लिए गए, एक तो ये कि अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं, अपने शौहर के बाद किसी और को अपने बिस्तर पे नहीं आने देंगी, और साथ ही साथ इसका मफहूम बच्चों की अच्छी तरबियत भी है। यदि मर्द पास हो या ना हो, मर्द के साथ रह रही हैं कि नहीं रह रही, सिंगल पेरेंट है, तलाक हो गई, बेवगी हो गई, बच्चे को नहीं बिगाड़ेगी औरत। ये मर्द का हक बनता है अपनी बीवी पर कि औरत उसके बच्चे को ना बिगाड़े। और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो, यहाँ अरबी का लफ्ज़ है नशूस, नशूस कहते हैं उठान, चढ़ना, यानी कुछ औरतों में फितरी तौर पर अपने बड़े होने का, अपने अक्लमंद होने का एहसास होता है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, मसलन पढ़ी लिखी ज़्यादा है, खूबसूरत ज़्यादा है, अकलौती है, करोड़ों के अकलौती वारिस है, माँ बाप ने स्पॉइल कर दिया, 6 भाइयों की एक बहन है। तो ये सारी कैफियत एक औरत में, यानी मुफसरीन नशूज़ के लफ्ज़ को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि औरत अंदर से ख़ुद को शौहर से बेहतर समझे। कोई भी वजह हो सकती है, मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, मैं यहाँ से बेहतर हूँ क्योंकि वो पाकिस्तानी है, मैं नॉर्वेजियन पासपोर्ट होल्डर हूँ ये पाकिस्तानी है, इसको नशूस कहते हैं। यानी शौहर को कमतर समझना, और फिर जब मिजाज बुरा हो तो चिड़चिड़ भी हो जाती है, बात का जवाब तुर्की बतुर्की दिया जा सकता है, पाँव भी पटके जाते हैं, शटअप भी कहा जा सकता है, तुम्हें अक़ल नहीं समझनी। यानी किसी भी तरह से एक औरत जिसको मर्द से सिर्फ एक हाथ नीचे, ये देखिए ये हाथ, ये मर्द का हाथ है, ये औरत का हाथ है। अल्लाह ये नहीं कहता कि मर्द इधर हो और औरत इधर हो, ये नहीं है इस्लाम की बाँट, बिल्कुल उतना ही फ़र्क जितना इस मेज़ और इस कुर्सी में है। ये मेज़ मर्द है, ये कुर्सी औरत होनी चाहिए। कुर्सी झुकी हुई, दबी हुई, सॉफ्ट, इस पे आप फॉर्म लगाते हैं और टेबल को आप हर वक्त सख्त से सख्त करना चाहते हैं। अगर ये 49 और 51 का रेशो होगा तो ये बेहतरीन घराना है। 50-50 नहीं है, 51-49, ये जुमला बच्चियों को सिखा कर भेजिए। अंदर कहीं ये नशूज छुपा होता है, फिर रवैयों में, चाल ढाल में, बातचीत में नज़र आता है, और फिर वो औरत जो आगे बोलती है। अब अल्लाह कहता है क्या करो, ऐसी औरत को घर भेज दो? नहीं, घर नहीं तोड़ना। लिख लें इस आयत का टॉपिक 34 का, घर बचाने की हर मुमकिन कोशिश करो। घर टूटने के लिए नहीं बनते, घर बचाने के लिए बनते हैं। लेकिन अगर मिजाजों में इतना फ़र्क हो, देखिए आदत बहुत आम चीज़ है, आदत के साथ एक दूसरे को बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। मर्द कम बोलता है, बीवी ज़्यादा बोलती है, मर्द कंजूस है, बीवी फजूल खर्चा, इट्स ओके। और मैं एक जुमले में इस रिश्ते को समेटती हूँ, बिलीव मी। और मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को और आप सबको इर्द गिर्द देखने वालों और जो मेरे पास लोग मसाइल लेकर आते हैं, इन सब की रोशनी में आज ये मंगेतर और रिश्तों ही पे बात ज़्यादा करना चाह रही हूँ, ताकि ये रिश्ता भी तो ठीक हो जाए। एक चीज़ याद रखिए, मोहब्बत ना हो फिर भी घर बस जाते हैं। है आप सबको मोहब्बत अपने शौहरों से? किस किस को है? कह सकती हैं उनको, तो ये बाकियों के हाथ क्यों नहीं खड़े हुए? किस किस को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं है? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें बढ़ाए, और आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त भी अपने अपने स्टेशंस पे घरों में बैठकर सुन रहे हैं, आप सब के दिलों में, अपने शौहरों और शौहरों के दिलों में आपके लिए वो मोहब्बत पैदा कर दे जो नबी सल्लम और हज़रत आयशा के बीच में थी। ये मोहब्बत बड़ी कीमती चीज़ है, लेकिन मोहब्बत के बगैर भी घर बस जाता है। खूबसूरत हो मर्द औरत ना हो, घर बस जाएगा। पैसे वाले हो ना हो, बस जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़िंदगी में याद रख लीजिए, इसके बगैर घर नहीं बसेगा, और वो बाहम एक दूसरे की इज्जत ना होना। आपको महसूस हो जाए ना, अगर शादी के बिल्कुल आगाज़ में इज्जत नहीं करती औरत मर्द की, या मर्द दोनों साइड्स पे मर्द इस औरत की इज्जत नहीं करता, फ़ौरन तोड़ दीजिए, इससे पहले कि अल्लाह अपना कोई बंदा दुनिया में भेज दे। बिलीव मी, क्योंकि इज्जत के बगैर रिश्ते नहीं निभते। फिर जितनी जल्दी जान छुटेगी सो लाखों पाएंगे। प्यार वक्त के साथ हो जाता है, मोहब्बत वक्त के साथ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन इज्जत नहीं बनती। जिन औरतों के दिल में गिरा पड़ जाए, गिट्ठा पड़ जाती है ना, और वो शादी के गानों में भी कई चीज़ें डाल डूल के भेजी जाती हैं दोनों तरफ से, तो घर नहीं बसते। इस सारी कैफियत को नशूज़ कहते हैं। अल्लाह कहते सब्र करो, पहला स्टेप इन्हें नसीहत करो, फैजूहम, दिल नरम करो, सोचो, अकल करो, होश करो, ये गुड़िया गुड्डे का घर नहीं है, ऐसे नहीं घर बसते, ऐसे मर्द को नहीं जवाब देते, मर्द के आगे नहीं बोलते, ये तुम्हारा शौहर है, ये अल्लाह ने चुना है, ये फैसला है, ये तुम्हारे माँ बाप का इंतखाब है, पूरी उम्मीदें बसी हुई हैं, उसको नसीहत करो, कोई नरम बातें करिए कि जिससे उसका दिल नरम हो जाए। बात समझ आ गई, मर्द भी करे कि बेगम ठीक है, ये नहीं वो नहीं, आप कहेंगे ये सारा औरत पे क्यों आ रहा है, फिक्र ना कीजिए, इसी सूरत के एंड पे बिगड़े हुए मर्द को भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह, उसका अल्लाह ने अलग चैप्टर रखा है। लेकिन देखिए, पहले औरत के बिगाड़ की बात है, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन यकीन कीजिए मर्द बिगड़ा होना तो सुधर जाता है। एक वक्त है डाली डाली कूद के फिर आखिर तने के रास्ते से आना पड़ता है। औरतों के मिजाज में अगर एक दफ़ा नशूज आ जाए तो अल्लाह ही पूरा कर दे। मैंने 50-50 साल शादीशुदा औरतों को भी देखा है, तो वो आहें भरती हैं कि मेरे क्या नसीब में पड़ गया, बुढ़े बुढ़ी हो चुके, घुटने जले गए, कमर जोरी हो गई, आज भी कहती हैं मेरे बाप ने मेरे लिए यही चुना था। यकीन कीजिए, सच है कि झूठ है? औरत पक्की बड़ी होती है, औरत अपनी बात छोड़ती नहीं है। तो अल्लाह कहता है कि उसको नसीहत करो, पहला स्टेप, नहीं हुआ ठीक है, नसीहत हो गई बात ठीक है, दैट्स इट, नहीं हुआ अब सेकंड स्टेप, और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो। मर्द को फिर भी नहीं ये कहा कि घर छोड़ के चले जाओ, वो नहीं जाएगी, तुम जाओगे, यानी बेडरूम छोड़ो, जाके स्टडी रूम में सो जाओ, लाउंज में जाके सो जाओ। बीवी के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ होता है कि मर्द उसके साथ सोना ही नहीं चाहता, चाहे वैसे नखरे करें, लेकिन जब मर्द उसको कहता है ना कि मुझे तेरे साथ नहीं सोना बैठना, तो बीवी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत की एक वीक पॉइंट है, और औरत नो नहीं सुन सकती, ये भी याद रखिए। लिहाजा यही बात कही कि सेकेंड फेज़ है कि एक हल्का सा टॉर्चर दो कि सोच लो, फिर मैं छोड़ सकता हूँ तुम्हें, इसके बाद भी ना सुधरे, अच्छी बीवियाँ या संभल जाएंगी, और अगर नहीं नशूज़ इतना ही पक्का है तो फिर आखिरी हल्की सी चोट और इन्हें मार की सज़ा दो। और अल्लाह के नबी की वाज़े हदीसें हैं, कोई मुंह पे ना मारे, कोई चोट ना लगे, और आपने एक मिसवाक पकड़ कर बताया ऐसे, ये देखिए, ये तो वो चपत है जो आप ऐसे प्यार से बच्चों को भी लगा देते हैं, सिर्फ उसके अंदर के शऊर को बेदार करने के लिए, जैसे टॉर्चर, बिजली के झटके दिए जाते हैं ना, ताकि वो जिस्म के हिस्से काम शुरू कर दें जो नहीं करते। मुराजे की औरत को बताओ तुम्हारा घर टूटने वाला है, और आज जितने तुम्हें मसले लग रहे हैं ना इस मर्द में साथ रहने में, कल जब तुम इसके साथ नहीं होगी ना, तो इससे ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाओगी। ये भी याद रखिए, छोटे छोटे मसलों को हल ना करते करते हम बड़े बड़े मसाइल का शिकार हो जाते हैं। घर की बात घर में रहे, आज लड़े कल सुलह, कल सुलह परसों लड़ाई, वक्त चल जाएगा, लेकिन बाहर रहकर दूर रहकर हसरत है, फिर अच्छा लगता है वो सब। कुछ अरसा जब जोश गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, फिर वो लड़ाइयाँ भी अच्छी लगती हैं, कितना मज़ा आता था, मज़े से लड़ते थे, बाद में सुलह कितनी प्यारी होती थी, फिर कितने मज़े से होटल में खाना खाने जाते थे। याद रखिए, ये ज़िंदगी जन्नत नहीं है, अल्लाह ने ये सज़ाएँ देने के बाद का, फिर अगर वो ताबेदारी करें, अब देखिए यहाँ मर्द को सख्ती की जा रही है कि अगर इन सारी चीज़ों के बाद एक औरत, एक बच्ची, लड़की संभल गई, तो फिर अब इन पर रास्ता तलाश ना करो, यानी आप उसको ताने ना दो, आप उसको ये ना कर, देखा तुझे सीधा किया मैंने, तू ऐसी थी वैसी थी, और ना उसको छोड़ने की बात करो, और बात बात पे तलाक की धमकी भी ना दो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। ये तो थी बात ख़त्म, यहाँ तक पूरी कोशिश करो घर बचाने की, घर की बात तीन स्टेप्स थे। अब ये भी नहीं समझे, फिर भी नहीं बनी बात, तो फोर्थ स्टेप क्या है? अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो, तो एक मुनसिफ मर्द वालों में से और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में मिलाप करा देगा। यकीनन अल्लाह ताला यकीनन पूरे इल्म वाला और पूरी खबर रखने वाला है। क्या पता चला घर बचाने का एक फिर अगला आखिरी तरीका क्या है कि बीच में बाहर वालों को डालो, न्यूट्रल होकर दोनों आए। क्योंकि देखिए जो लड़ रहे होते हैं ना, उनकी अकल काम नहीं करती, वो तो बेवकूफ़ होते हैं, दोनों के ऊपर जज्बात सवार होते हैं। तो फिर बाहर वालों का ये फ़र्ज़ होता है कि दोनों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, और अगर मवाफ़कत होनी होगी तो अल्लाह मवाफ़कत करा देगा। और अगर इसके बाद जुदाई हो जाए तो इतना गम नहीं करना चाहिए, हो गया सो हो गया। देखिए इस्लाम ने जिस तरह निकाह को आसान किया है ना, इसी तरह तलाक को भी आसान किया है। क्यों? जिना ना हो, एक छत के नीचे बैठे दो लोग एक दूसरे से नफरत की आग में ना जल रहे हों। मुस्लिम खुट जो पिछले पारे में पढ़ा, तो ये मुस्लिम खुट शौहर बीवी में भी होना चाहिए, इवन छोड़े हुए तलाकशुदा जोड़ों में भी होना चाहिए। ये बात कभी काबिले बर्दाश्त नहीं। मसाब देखिए इस हॉल में हम कितने लोग बैठे हैं, माशाल्लाह, सीखने सिखाने आए, खिदमत करने कराने आए दीन की, ये सब अपनी जगह। लेकिन आपके मेरे दिल में एक दूसरे के लिए अगर नेगेटिव जज्बात आ गए तो हमारा यहाँ बैठना मुहाल हो जाएगा। मैं कहूँ क्या मुसीबत है ये आ गए, आपके ये क्या है ये बोलती जा रही हैं। तो ज़िंदगी में असूल याद रखिए कि हमेशा साथ रहने वाले लोगों के साथ अच्छे जज्बात रखिए। तो यहाँ ये बात करके अब अगली आयत, जिसका ख़ास तौर पर हमारे इस थीम यानी रिश्तों को जोड़िए से बड़ा गहरा ताल्लुक है, देखिएगा 36। और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ सलूक व एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिसकीनों से और कराबदार हमसायों से और अजनबी हमसाये से और पहलू के साथी से और रख के मुसाफिर से और इनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं यानी गुलाम और कनीज़। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। जो लोग खुद बखीली करते हैं और दूसरों को भी बखीली करने को कहते हैं, अल्लाह ने जो अपना फजल इनको दे रखा है इसे छुपा लेते हैं। हमने इन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिसका हम नशीन और साथी शैतान हो, वो बदतरीन साथी है। भला इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ताला ने जो इनको दे रखा है इसमें से खर्च करते। अल्लाह ताला इन्हें खूब जानने वाला है, बेशक अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता। अगर नेकी हो तो इसे दुगनी कर देता है और ख़ास अपने पास से बड़ा सवाब देता है। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। जिस रोज़ काफिर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इन्हें ज़मीन के साथ हमवार कर दिया जाता और अल्लाह ताला से कोई बात ना छुपा सकेंगे। ज़रा सा सोचिए उस वक्त को, क़यामत का दिन होगा, सामने खड़े सब पर्दे हट गए और इंसान शर्मसारी के मामले ज़मीन में खड़ा जाता है। ऐसे वक्त में एक इंसान फिर पछताएगा कि मैंने ज़िंदगी क्यों ज़ाया कर दी, मेरी ज़िंदगी किन चीज़ों में चली गई। आज आप देखिए बहुत आसान है अपने आप को गुनाहों की दलदल में जमा करना और इस तरीके से अपने आप को पेश कर देना कि जिसके बाद फिर आप अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते जाए, लेकिन क़यामत की रुसवाई बहुत सख्त है। बीवी की सरकशी की सूरत में इस्लाम ने क्या रिहेबिटेशन दिया? पहली बात है नसीहत करो, ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो वक्ती तौर पे लहदा हो जाओ, ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हल्की सी मार मारो। ये तीन बातों के बाद बात ठीक हो गई तो क्या करो? सुलह करो, सुलह की सूरत में ताने ना दो, बीवी को फिर आर ना दिलाओ। अगर इन तीन घरेलू तरीकों से भी बिगाड़ ना बेहतर हो तो क्या किया जाए? ये चौथा स्टेप है, दोनों जानिब से एक गैर जानिबदार हाकिम इस्लाह की कोशिश करे। अगर खलूस होगा तो अल्लाह ताला मवाफ़कत डाल देगा। ये बड़ी अहम बात है। خلوص ہوگا نا تو اللہ موافقت ڈالتا ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رشتے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ رشتے یعنی منگنیاں ہوتی ہیں بھائی بہنوں کی، یہ بچوں کی، پھپھی اور ماموں کا بیٹا، خالہ خالہ کے بچے، غیروں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں کے رشتے رہیں یا ٹوٹیں، یعنی منگنی ہوئی ٹوٹی رہی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک عالم کا عمل سن لیجئے، مولانا عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ، ایک مشفق اور مہربان استاد تھے۔ ان کے ایک داماد نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی، داماد ان کا شاگرد بھی تھا۔ اسے اپنے گھر بلایا اور کہا، بیٹا تیرے میرے ساتھ تین رشتے تھے، پہلا اسلامی رشتہ، تو مسلمان میں بھی مسلمان، اخوت اسلامی کا رشتہ، پچھلا پارہ یہی تھا نا مسلم ہوٹ، دوسرا شاگردی کا رشتہ، یعنی تو میرا شاگرد ہے۔ اس رشتے کو کبھی سنا ہے آپ نے آج تک زندگی میں؟ استاد شاگرد کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ تیسرا داماد ہونے کا، ایک رشتہ آپ نے توڑ دیا لیکن باقی دو رشتے ابھی سلامت ہیں، یعنی میں تیرے سے دل میلا نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، اب تو میرا داماد نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، تو مسلمان تو ہے، تو میرا شاگرد تو ہے۔ اللہ ایسے دل بڑے کر دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس حصے میں ہم نے آیت 36 میں ایک لمبی لسٹ ہے، یہ ہمارے رشتے جوڑنے کے ٹاپک کی آیت ہے، آپ اس پہ بھی تدبر کر سکتے ہیں۔ انسان کے حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے والدین، پھر رشتہ دار، یتیم، محتاج، رشتہ دار ہمسائے، یعنی جو نیبر میں رہتے ہیں، ہمسائے میں رہتے ہیں اور ساتھ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، دوسرے اس سے کم درجے پہ اجنبی ہمسائے ہیں، تیسرے ساتھ رہنے والے صاحب بالجنب، یہ کون ہے جو اس وقت آپ ایک دوسرے کے ہیں، آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی بیٹھتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بس میں گئے ساتھی کوئی بیٹھا تھا، جہاز میں گئے آپ کی سیٹ پہ، ان کے بھی حقوق اسلام نے بتائے ہیں، تو کہاں ساتھ رہنے والوں کے نہ بتائے ہوں گے۔ پھر اسی طرح مسافر اور غلام، لونڈیاں اور نوکر بھی ہیں۔ پھر آئے 36 سے جو عمل کی بات ہم نے سیکھی وہ کیا ہے؟ اور کبھی دوسروں کی طرف سے ملنے والے رویوں سے غور سے خود پر نظر رکھے، انصاف سے اپنا محاسبہ کرتے رہیں، تو بآسانی جانچا جا سکتا ہے کہ قرآن نے متقی، مخلص، مومن ہونے کا جو معیار دیا ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اگر آپ اس پہ غور کر رہے ہیں تو، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں عمل اور اس کا انجام آیت کے آخر میں موجود ہے، انجام اپنے عمل کا تابع ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس رکوع سے کچھ عمل کی باتیں لکھتے ہیں، فوراً نوٹ کر لیجئے گا۔ اس سے کیا سیکھا؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے خاندان اور معاشرتی تعلقات کی اصلاح کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا ڈر اگر نہیں ہوگا نا تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے لازم ہے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں موجود ہو۔ دوسری بات ہے شہادت حق کا کام عمر بھر کرتے رہنا ہے۔ تیسری بات ہے اطاعت شعاری اختیار کرنی ہے۔ چوتھی بات، حقوق کی حفاظت کرنی ہے۔ پانچویں بات، شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ پھر چھٹی بات، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین، یتیموں اور مسکینوں، ہمسایوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے اور سرکشی نہیں کرنی، دوسروں پر زیادتی کے بہانے نہیں ڈھونڈنے، اپنی بڑائی پر فخر نہیں کرنا، غرور اور بخل نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، دوسروں کو بخل کرنے کی نصیحت نہ کریں، اللہ کے فضل کو ظاہر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اور سب سے بڑھ کے شیطان سے دوری رکھنی ہے، یوم آخر کی تیاری کرنی ہے، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کی قوامیت کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔